ओम ज्ञानति मदन्त श्रीज्ञानेन्द्रं शलाकाय तक्षशूलेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयदासीत् जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गतादो शिवासदि गौरवतम
हरे कृष्ण 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 हरे राम
श्री प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि प्रोसेस जो है इसके विषय में हमने आपको चर्चा किया था पिछली बार कि जब आप कृष्ण के विषय में सुनते हो कृष्ण भावना का हम विकास जब करते हैं तो हम सत्वगुण की ओर कम से कम सत्वगुण की ओर आना चाहिए कम से कम, क्योंकि सत्वगुण का जो परिणाम आता है वो शुद्ध आता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना सत्वगुण अच्छा है सत्वगुण अच्छा है, तो सत्वगुण अच्छा है इसलिए क्योंकि वो शुद्ध सत्व के बहुत ही करीब है, बहुत ही पास है वो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्री प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्री चेत एते ऋणाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो जब तक हम सत्वगुण तक नहीं पहुंच पाते तब तक कृष्ण भक्ति को अनुकूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्वगुण का अर्थ ये नहीं कि जब तक हम अहंकारी नहीं हो जाते, सत्वगुण का बाय प्रोडक्ट या सत्वगुण का जो डिफेक्ट है वो है अहंकार, लेकिन सत्वगुण के जो क्वालिटीज है वो कैसा है, शुद्ध। सत्वगुण में साफ सुथरा अच्छा लगता है, दिन में कम से कम 2 या 3 बार स्नान करते हैं, फिर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, बाल नियमित रूप से काटते रहते हैं, तो ये स्वच्छता अच्छी लगती है, सादगी होती है, उनको उच्च विचार वाले होते हैं, उनको भगवत प्राप्ति या विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना अच्छा लगता है, उनको प्रकृति से के साथ रहना अच्छा लगता है, दे आर मोर नेचर लविंग और पीसफुल होते हैं, बहुत सारी देयर मेनी क्वालिटीज भी डिस्कस अर्लियर। तो सत्वगुण में व्यक्ति जब कोई स्थिर होता है तो देर आर चांसेस दैट ही कैन बिकम डिवोटी। सत्वगुणी व्यक्ति को अगर आप बताओगे ना भगवद गीता का संदेश क्या है तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, मैनी चांसेस है। लेकिन अगर कोई श्रीमद् भागवत को रेगुलर सुनता है या पढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण की जो असर है उससे मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत हमारी समस्या क्या है कि मैं रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हो गया हूं, मुझ में आलस्य है, मुझ में लोभ है, काम है, तो ये सब भर के पड़ा है और इसके कारण मेरा भगवान के प्रति जो प्रेम या संबंध है वो विस्मरण हो चुका है, वास्तव में मैं उसको भूल गया हूँ। जुड़ गया, अभी साधन भक्ति में जुड़ गए, लेकिन जितना अधिक हम श्रवण करते हैं भगवान की कथाओं को, भगवान के संदेश को, उतना रजोगुण और तमोगुण हमारे हृदय से स्वच्छ होता जाता है। सदा रजस तमो भाव काम लोभादय से, काम लोभ इत्यादि जो है वो उसकी इफेक्ट है रजोगुण और तमोगुण की, उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सो टाइम लगता है लेकिन निश्चित हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप आज आपने भागवत कथा सुना और आप महात्मा बन जाते हो, ये नहीं होगा, इसमें समय लगता है। जैसे सरोपाधि विनिर्मुक्तम सताम मम सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगात मेरे दिव्य लीला चरित्र मम वीर्य संविदो, मेरे लीला है जो भी है वो भवन्ति रित्कर्ण रसायनक कथा, भगवान के भक्तों के पास से जाकर के मेरी दिव्य कथा है जो सुनता है वो कान का एक रसायन जैसा है, रसायन कथा तद घोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनी, उस व्यक्ति का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है और वो मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है अपवर्ग। लेकिन ये कैसे होता है, श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा भक्ति रति अनुप्रमिष्यति, अर्थात श्रद्धा से प्रेम, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक। आपने पहले शायद फर्स्ट मॉड्यूल में ये पढ़ा था ना, आदर्श श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया, तो आपको याद होगा शायद, याद रखना चाहिए हमें कि श्रद्धा से शुरुआत होती है और प्रेम हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, तो श्रद्धा से लेकर के हमारी जो भक्ति रति तक पहुंच जाती है वो अनुक्रमिष्यति, अनुक्रम अर्थात ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो पहुंचती है। और हो सकता है कि अगर हम कमजोर है तो हम एक जन्म बीत जाए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसी जन्म में हम कर लें। कई बार क्या होता है कि अनर्थ निवृत्ति कष्ट जैसा होता है कि वहां पर अटक जाते लोग। जैसे आज श्रद्धा थी तब मंदिर आए, फिर साधु संघ किया, भक्तों का संघ किया, कोई मिला, अभी भी हो रहा है भक्तों का संघ, यू नो अभी आप हर रेगुलर आते हो मंदिर में, तो भक्तों का संघ हो रहा है, फिर भजन क्रिया आप सोलह माला जप करते हो रोज, आप मंगला आरती इत्यादि सब करते हो, ये भजन क्रिया हो रही है आपकी, कथा श्रवण वगैरह, फिर अनर्थ निवृत्ति अर्थात जो अनवांटेड डिजायर्स है हृदय में, बहुत सारी कामनाएं होती है, बहुत सारी इच्छा, ये सब कुछ जो होता है अनर्थ, बहुत अनेक अनर्थ होते हैं, ये सब जब नष्ट होते हैं तब जाके किसी को निष्ठा आती है। तो ये पूरा सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फिसाड़ या विम्सिकल काम नहीं हो रहा इधर कि बैठ जाओ भगवान, दो दो चार नाम सुन लिया भगवान का, इधर कुछ लोग बोलते हैं ना थोड़ी देर जाके बैठो, जो दो का दो शब्द कान में पड़ जाए भगवान के लिए, लेकिन हम वो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन हम पूरा प्रोसेस में है, हम पूरे सिस्टम से काम कर रहे हैं, और ये प्रोसेस इस तरह से है कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च, इससे हम मुक्त होते हैं जैसे जैसे कथा श्रवण करते श्रीमद भागवतम का। तो इसका परिणाम आता है कि शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाते, चेत एते ऋणावित्तम, शुद्ध हो जाता है, तो फिर काम और लोभ का प्रभाव कम हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है काम और लोभ, इसका प्रभाव। और जब ये दोनों काम और लोभ से जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है तब वो सुखी हो जाता है, इट बिकम्स हैप्पी। सो टेक्स्ट नंबर 17 टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, सो कैन वी गो विद द टेक्स्ट नंबर 17।
सदुगुण में भक्ति ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में दोष उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता
है। हाँ, ये उसके इफेक्ट है। हाँ, किसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या क्या आता है, सत्व में ज्ञान, रजोगुण में लोभ, और तमोगुण में अज्ञानता, फुलिशनेस, मैडनेस, इल्यूजन, मोह। तो ये तीनों इससे प्रकट होते हैं, अलग अलग चीजों से, अलग अलग वस्तु है, दे आर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कॉजेस ऑफ दोज रिजल्ट्स, उसके जो परिणाम आते हैं उसका हम यहां चर्चा कर रहे हैं। सो जो कार्य सत्वगुण के अंतर्गत आता है वो आपको शुद्धता की ओर ले जाता है, शुद्ध, जैसे आप समझ लो कि किसी व्यक्ति को हेल्प कर रहे हो, या फिर पौधे में पानी डाल रहे हो, या फिर आप सुबह सुबह उठ करके मंदिर साफ कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो भगवान की, तो ये सत्वगुणी वस्तु है, तो इससे शुद्धता आती है, लेकिन और ज्ञान प्रकट होता है, जो धीरे 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 वो चेतना उसकी उज्जवल होती है। लेकिन रजोगुण में क्या आता है, दुख, क्योंकि दुख आता है, क्यों आता है, क्योंकि अनंत इच्छाएं होती है और कभी तृप्त नहीं होने वाला लोभ होता है, तो दुखी होता है। देखा कई बार लोग होते हैं ना ऐसे बेचारे, देवदास करके देवदास पड़े रहते होते हैं, हमारे ऊपर एक पड़ोसी है, एक बार क्या हुआ कि उसको ऐसा कि ये लोग संत लोग हैं मंदिर में जाते हैं तो ये लोग अच्छे अच्छे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह सब जानते होंगे। तो एक लड़का आया हमारे मेरे पास, मैं उसको बोला, मैं सोचा कि ये तो कभी मिलने आ रहे नहीं आजकल, फर्स्ट टाइम मुझे मिलने आ रहा है। बोले क्या बात है बताओ, घर पे मिलना है, वहाँ घर पे मिलते चलो वहाँ मिला। बोले कॉन्फिडेंशियल है, मैं कहा मैं सोच रहा यार पहली बार मिल रहा है इसमें कॉन्फिडेंशियल, कुछ जरूर कुछ काला है इसमें बताओ क्या है। तो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं बड़ा दुखी हूँ और अभी मैं शादीशुदा। बोले नहीं जॉब कर रहे। बोले हाँ। तो फिर उसका 10 मिनट तक वो रोता रहा, मैं सुन लिया उसकी बात को और फिर मैंने उसको कुछ टिप्स दिए कि देखो देखो तुम ऐसा करोगे ऐसा करोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं चाहता था उसको बोल सकता था कि तुम मैं ही मिला तुम्हें पूरे तुम्हारे ब्रेकअप का कचरा मेरे ऊपर डालने आए। तो और इसका सॉल्यूशन तुम मेरे पास ढूंढने आते हो, गलती तुम करते हो सॉल्यूशन मैं दूंगा। बट स्टिल आई सेड, मैं बताया उनको कुछ देखो ऐसा ऐसा कुछ करो तो तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। सो 6 साल भर के बाद फिर से आया, फिर से मैंने उसको देखा, वो पूछे उससे पहले मैंने पूछ लिया फिर से हो गया ब्रेकअप। तो बोला हाँ उसके उससे क्या उसके जुड़ी हुई समस्या है लेकिन अभी इस पर दूसरी समस्या है। तो फिर वो समस्या बताई तो उस व्यक्ति के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि वो बेचारा कितना भी प्रयास करता है लेकिन दुखी रहता है, वो सुखी हो ही नहीं पा रहा है। कितना भी आप है ना, आप पूरा वर्ल्ड कप मैच देखेगा लगे सेमीफाइनल हार गया तो रोता ही रहेगा रोता ही रहेगा रोता ही रहेगा, क्यों रो रहा है भाई। लेकिन अनलिमिटेड डिजायर्स, अनंत इच्छाएं और कभी समाप्त नहीं होने वाला लोभ, अभी समझ लो जिसके पास इच्छाएं और लोभ दोनों होता है वो व्यक्ति शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। और जो शांति प्राप्त नहीं कर सकता उसके लिए सुख की तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती ना, कि वो सुख कैसे प्राप्त होगा उसको। और फिर भी ये सब वो किसके लिए कर रहा है पता है, सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है। ये सब कुछ जो कर रहा है वो सुख की प्राप्ति के लिए कर रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो नाउ और अज्ञानता में जो कर्म होते हैं वो उसको मूर्ख घोषित करता है, वो व्यक्ति मूर्ख है। मूर्ख आप पैर पे कुहाड़ी मार लो अज्ञानता। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं
आपके जैसे।
अच्छा
वो लाबा मंदिर है वहां मैं दिसंबर से 3-4 महीना तक वहां प्रचार के लिए जाता था, परमिशन के लिए चेयरमैन के पास गया था। तो एक बार भाई थे वहां, पहले वो वहां का ट्रस्टी था मेरी बार बेटा, तो मैं अंदर जाता था क्योंकि अंदर चेयरमैन है लेकिन मिल गया हूँ तो मुझे मिल के जाना था, कोई बात नहीं 10-15 मिनट बाद की बार आता मुझे अलग से रूम में ले गए। फिर बाद में वो अपनी कहानी चालू की आपने जैसे बताया, और वो भी छोटा नहीं था करीबन 50 साल का मिनिमम।
अच्छा।
और चालू किया और मुझे कहते कि मैंने कितना भी यहाँ भी मैंने बहुत काम किया ऐसा किया वैसे किया मेरे पास फिर भी मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे पास पैसा रहता ही नहीं है चालू हो गए वो ना चालू हो
गए।
मैंने सोचा क्या बोलूं क्या कहूं उनको, फिर मैंने उनको सांत्वना दी और बाद में बोला तो बोलो अपनी तो फर्स्ट विजिट है बराबर है आपका जो भी प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलते हैं तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे।
Yes. रजोगुण का प्रभाव में व्यक्ति बहुत दुखी होता है। आप देखिए ये बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स और ये बड़े बड़े जो टाइकून्स बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी ये लोग भी चिंतित रहते हैं कि मेरा स्थान कोई और ना ले ले, मैं नंबर वन का नंबर टू ना बन जाऊं, इसके लिए चिंतित रहते। और वो जो घोटाले वाले लोग होते हैं करोड़ों करोड़ों का घोटाला करने वाला होता है वो घोटा वाला भागता ही फटता है, वो इधर भागता है उधर भागता है इधर भागता है क्या करता है, सुख कहीं पर भी नहीं इधर। और तमोगुणी लोग तो मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं, सुसाइड बॉम्बर होते हैं, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा, और इस प्रकार के लोग, जैसे 370 का कलम हटा दिया तो बोले बिजनेस बंद कर देगा, ये तमोगुण नहीं है तो क्या है, और बिजनेस बंद कर देंगे, तुम्हारा विकास तो हो ही नहीं रहा है, सभी तुम्हारे देश का कुछ हो ही नहीं रहा है, और ऊपर से तुम हमें धमकी दे रहे हो कि बिजनेस बंद कर दो, इसको तमोगुण ही बोलते, ये मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मूर्ख दिखाई दे रहा है, अगर वो अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये इतना भी मूर्ख हो सकता है, लेकिन अपने कार्यों से वो दिखाता है कि देखो मैं कितना मूर्ख हूं, ऐसे सो तमोगुण में इस प्रकार की मूर्खता दिखी जाती है। प्रभु तात्पर्य में कहते हैं सिंस द प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज नॉट वेरी कॉन्जीनियल टू द लिविंग एनर्जीज, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रिकमेंडेड, थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी विल डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस, व्हेन द मोड ऑफ गुडनेस इज डेवलप्ड पीपल विल सी थिंग्स एज दे आर, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस पीपल आर जस्ट लाइक एनिमल कैनॉट सी थिंग्स क्लियरली, इन द मोड ऑफ पैशन पीपल बिकम ग्रीडी एंड द हैंकरिंग फॉर सेंस एंजॉयमेंट हैज नो लिमिट। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ही उपाय है अभी सबको संसार को उद्धार करने के लिए, कृष्ण भावनामृत से ही सत्वगुण का विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, लोभी होकर के केवल इंद्रिय भोग की कामना करता रहता है। सो 99% लोग रजोगुणी तमोगुणी है। जब प्रभुपाद बोस्टन बंदर गए थे फर्स्ट टाइम लाइफ में अमेरिका, तो जलदूत में जब वो जा रहे थे तो जलदूत से अभी तो लैंड हुआ नहीं था, वो हार्बर पहुंचे नहीं थे, अभी पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने सामने से बड़ी बड़ी स्काईलाइन बिल्डिंग देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो प्रभुपाद ने देखा और सब आसपास के सब देखा, ये हिप्पी प्रकार के लोग और उस प्रकार के प्रभुपाद ने, तो एक कविता लिख डाला प्रभुपाद ने, वो कविता किस तरह से था, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधम मेरे पति, हे कृष्ण आपने बहुत कृपा किया एक अधम के ऊपर, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधम मेरे पति, की लागिया नीले था करो ये गति, आप मुझे क्यों इधर लाए अभी वो मुझे नहीं पता है, अच्छे किचु कार्य तब यही अनुमान है, इसका मुझे अनुमान है कि शायद आपका कोई यहाँ पर कोई कार्य है इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, ना ही कहना आनी बेना यही उग्र स्थान है, नहीं तो आप इस उग्र स्थान में क्यों लाते मुझे, यहाँ पर रजोगुण तमोगुण का वातावरण है। बहुत बहुत सुंदर कविता लिखी है प्रभुपाद ने, अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा आपका गुणगान हो, मेरे द्वारा आपके संदेश का प्रचार हो, तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए हे प्रभु कि मेरी बात वो लोग समझ सके, आप उनके हृदय में भी हो तो आप उनको ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरी बात को लोग समझ सके। बहुत सुंदर प्रार्थना प्रभुपाद ने कहा, और अंत में लिखते हैं कि मुझ में ना ज्ञान है और ना ही भक्ति है, मैं तो केवल आपके हाथ में कठपुतली की तरह हूं, आप जैसे मुझे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा, लेकिन आपकी क्षमता है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इन लोग का उद्धार हो जाए तो मुझे आपका निमित्त बना दीजिए। इस तरह से प्रभुपाद बड़े सुंदर शब्दों से ऐसी कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता है। आई डोंट नो आप लोग बक लोग कभी प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सॉन्ग गाते भी हो या पढ़ते भी हो, पर हमें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रजोगुणी लोग जो होते हैं जैसे उन लोगों को ऑफिस में पड़े रहना, वर्कलोड उसमें उनका बड़ा इच्छा रहता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का कोई सीमा नहीं। और तमोगुणी लोग कैसे होते हैं, अभी अभी हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद कहते कि पशु तुल्य होते हैं, पशु जैसे, तमोगुण का प्रभाव ज्यादा दिखाया जाता है, पशु तुल्य कुछ नहीं, पड़े रहते, खाते है, सोते है, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, फिर वापस वही धंधा करते हैं। और हमने बताया था आपको, पता है कुत्ता क्या करता है, एग्जांपल बताया था आपको, तमोगुणी वो क्या करता है, कोई भी पशु जनरली कुत्ता, कुत्ते का एग्जांपल है, तो पहले क्या करेगा, वो दिन में उठ करके दौड़ेगा इधर उधर खाना ढूंढने के लिए, कुछ भी उसको आप सोचो आपको तो क्या खाता होगा, आपको भी कभी विचार करो, स्ट्रीट डॉग जो होता है वो करता क्या होता है पूरा दिन, उसका स्केड्यूल क्या होता होगा दिन का, वो सुबह उठ करके दौड़ता है भोजन की तलाश में, ये कहीं से भोजन मिल जाए, और जैसे ही भोजन मिलता है उसको फिर वो सीधा चला जाता है कुत्ती के पास, फिर वो इंद्र भोग करता है सेक्स डिजायर, वो कंप्लीट फुलफिल हो जाता है उसका, और उसके बाद फिर कहीं जगह ढूंढ लेता है, बैठ जाता है, और फिर आप देखना उसको हाँफता होगा, ऐसे हाँफ रहा होगा, देखना आपको उसको, फिर वो सो जाएगा, थक गया पूरी तरह से, तो वो थक गया, फिर उठेगा और उठ करके फिर वापस भोजन के लिए दौड़ेगा, और यही उसकी लाइफ है, यही इसका ब्रह्मचारी आश्रम बोलो, वानप्रस्थ आश्रम बोलो, गृहस्थ आश्रम बोलो, सब कुछ इसके अंदर है, यही करता, कुछ नहीं करता वो व्यक्ति, और कुछ नहीं करता, और आजकल लोग यही करते हैं ना, पशु तुल्य जीवन जीते, दिन जैसे उगता है तुरंत दौड़ पड़ते हैं पैसे की खोज के लिए, पैसे के, जैसे कुत्ता भोजन सुनता है वो डायरेक्ट आदमी का डायरेक्ट काम करता है कि खाना ही ढूंढता है, और ये पैसा ढूंढता है, जब पैसा ढूंढ के आता है आकर के फिर थोड़ा बहुत इंद्रिय भोग करेगा और फिर सो जाएगा, फिर वापिस सुबह उठेगा फिर वापिस दौड़ेगा, यही तो करते लोग, दिस द ओनली थिंग व्हाट दे डू, इसलिए रजोगुण तमोगुणी जैसे पूरा संसार इस तरह का बन गया है। अभी टेक्स्ट नंबर 18 में उन लोग की गति कैसी होती है वो बताया है, 18वां पढ़िए।
सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः कुछ लोगों को ऊपर जाती है, रजोगुणी किसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है, फिर नीचे नरक लोकों में जाते
हैं। तो ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थ, जो सत्वगुणी प्रकार के जो लोग होते हैं उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, स्वर्ग में जा सकते हैं या उससे भी ऊपर के लोग में, पितृलोक में, जन लोक, तपलोक, सत्यलोक, उसमें जा सकते हैं, ऊर्ध्वम उनकी ऊर्ध्व गति होती है, मध्ये तिष्ठति राजसा, तो रजोगुणी लोग होते हैं वो यही भूलोक में रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर फिर से जन्म आता है उनका पशु के रूप में या इस तरह से अलग अलग। तमो जघन्य गुणवृत्ति स्था, लेकिन जो जघन्य पाप करने वाले लोग होते हैं, जघन्य पाप का अर्थ कैसा होता है कि ब्रुटैलिटी, बहुत ही निम्न कोटि के पाप करने वाले, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की हत्या कर देना, या किसी इस प्रकार के एकदम निम्न कोटि के पाप, गाय की हत्या करना, वहां निम्न कोटि का पाप, जघन्य गुण वृत्ति, बहुत किसी का रेप करके मार डालना, ये जघन्य गुण वृत्ति है, बहुत ही गंभीर अपराध है ये सब। तो जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति, उन लोग को फेंक दिया जाता है नरक में, अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी लोग, ये सब तमोगुणी लोग होते हैं, टेररिस्ट वगैरह सब लोग, और उन लोग को फेंका जाता है नरक में। तो यहां पर गच्छन्ति गच्छन्ति तो दो बार आता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति ऊपर मिस जाते हैं, और एक बार है तिष्ठति, वही रहते हैं, तिष्ठति तिष्ठति में रहो, उधर ही रहो, तिष्ठति उधर रहते हैं। तो इसलिए तमोगुणी जो लोग होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो आपको कुछ कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, सब हर एक कर्म के अनुसार उसका परिणाम आता है। अगर वो कहता है कि सब भूमि गोपाल की, या गुजरात दूसरा गुजरात में बोड़ी बामी के तहत जिसको जो करना है कर सकता है, कोई कुछ नहीं होने वाला नहीं, सत्वगुणी लोग को ऊपर जा सकता है, रजोगुण इधर रहेगा और तमोगुणी को फेंक दिया जाएगा। अब कोई कहेगा कि किसने देखा है, तो कौन आपको देखने का बोल रहा है, उसी समय जाके देख लेना ना, जब आपको फेंक देंगे तभी उसी समय जाके देख लेना। अगर कोई कहेगा कि मैं यहाँ पर किसी को दो चांटा मार दूं, तो कौन देखने गया है कि मेरे दो चांटा सामने पड़ेगा, ठीक है जाके देख लो, मार के देख लो किसी को, देखो सामने क्या होता है। हर एक कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कर्म करो आपका परिणाम नहीं मिलेगा, नहीं, लेकिन ऐसा जघन्य काम करने वाला होगा तो उसको थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, दे मस्ट। तो इसलिए 11th कैंटो में भगवान उद्धव को कहते हैं कि किस तरह से हम प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। जैसे कुछ ऐसे लक्षण है जिसके माध्यम से हम तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं। ऐसे तो कई जगह है, कई ऐसे है, लेकिन संस्कृत के कुछ विशेष शब्दों का वर्णन भगवान ने किया है। आगम, आगम, हम लोग सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, ये तीन में से किसी एक के प्रभाव में आते हैं, उसके मूल मुख्य कारण कौन से होते हैं। तो जो शास्त्र हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो आगम, 11th कैंटो में आता है श्रीमद् भागवत के, जो आप शास्त्र बुक या जो भी आप सुनते पढ़ते हो उसके कारण से हमें गुण प्रवेश करते हैं। फिर आपह, आपह का अर्थ होता है जल, जो जल हम पीते हैं अर्थात जो भोजन हम खाते हैं, टाइप ऑफ भोजन जो खाना हम खाते हैं, उसके आधार पर हम तीन गुण में डिवाइड होते हैं। फिर प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है कि हमारा संग किसके साथ है, किसका संगति हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में घुसते हैं। अब देखा ना, एक पहला है शास्त्र क्या पढ़ते हो, फिर भोजन क्या खाते हो, फिर संग कैसा होता है, अर्थात अब भक्तों के लिए भी काम में आता है ये सब। डिवोटीज को भी इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए कि ये 9 चीज होगी शायद, जो भी है व्हाटएवर, तो सब इसको शुद्ध करने का प्रयास। प्रजा, प्रजा के बाद देश, देश भी हम जहां रहते हैं वो स्थान, उसका प्रभाव भी रहता है। कई बार कुछ रजोगुणी स्थान होते हैं जैसे फैक्ट्रीज, सिटीज, शहर, रजोगुणी है। फिर गांव, विलेजेस, और कृषि खेत वाला जो जगह है, या फिर मंदिर, ये सत्वगुणी है। और फिर शराब का दुकान, ये गैम्बलिंग हाउस, कैसीनोस, यू नो, जहाँ पर हत्याएं होती रहती है, बूचर हाउस, क्या बोलते हैं उसको, स्लॉटर हाउस, तो ये सब जगह तमोगुणी है। सो देयर आर प्लेसेस, देन
भक्तों की जब बात है वहां तक तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, साधु संग शास्त्र के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान। लेकिन नॉर्मली आपने बोला, रूपा जी बोले 99% रजोगुणी तमोगुणी, तो प्रॉब्लम ये होता है जैसे कि कोई ये सोचेगा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण जैसा माहौल क्या है, तो क्या अमेरिका में, तो कोई अमेरिका से आया तो बोलेगा बहुत मजा वाली बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार जाओ पता चलेगा दुनिया वही है, तो वो रजोगुणी का एक एग्जाम्पल है। तमोगुणी की बात करें तो किसी को मानो के किसी ने हत्या की थी, मर्डर किया, कोई भी गुनाह किया था, तो उसको जेल में बहुत पिटाई हुई थी, इतनी पिटाई हुई थी तो वो दूसरी बार कभी नहीं करेगा, तो वो बाहर आएगा तो बोलेगा अरे पापा करना मत वरना लग जाएगा। तो रजोगुण का एक्सपीरियंस कोई आके कहता है, सत्वगुण का तमोगुण का कहता है, लेकिन आध्यात्मिक है सत्वगुण का कि जो वैकुंठ से आया है या फिर भगवान के धाम से वापिस आके बोलता है बढ़िया है यही करते रहो, आप भी जाओगे वापिस आने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस कहने वाला लोग ऐसा मतलब कि साधु शास्त्र गुरु के सिवा तो है ही नहीं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस करके आप वो बोलते कि बताओ एक आदमी को बताओ जो वहां के आके वापिस आया और बोले कि बढ़िया है। तो इसका
सीखने वाले की अलग अलग श्रेणियां होती है, कोई व्यक्ति केवल पढ़ के समझ जाता है और कोई व्यक्ति देखने से भी नहीं समझता है। तो जो पढ़ के समझने वाला, जो लर्नर होता है, सीखने वाला व्यक्ति, वो नंबर वन माना जाता है, जो पढ़ के ही समझ जाता है। और ये जो शास्त्र है जो जिसको हम पढ़ रहे हैं वो भगवान के द्वारा गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं, तो बुद्धिशाली व्यक्ति को इशारा काफी है। तो शास्त्र पढ़ेगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि वैकुंठ क्या है, भगवान का धाम क्या है। और भक्तों का संग करता है, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है वो खुद बता रहा है अपने मुख से। अभी उस व्यक्ति को अगर वो सही में बुद्धिशाली है तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो थर्ड क्लास कैटेगरी का कोई स्टूडेंट होता है तो फिर उसको हम लोग वैकुंठ के वर्णन के बदले उसको धीरे 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 फिर वो आपके योगा लेटर के माध्यम से लाना पड़ता है। कि तुम कर्मयोग से फिर निष्काम कर्म योग, इस तरह से धीरे धीरे उसको शुद्ध करना पड़ता है। अचानक से वो नहीं सुनता है बात, इस तरह से उसको समझाना पड़ता है। और तमोगुण में ये तीन प्रकार के जो गुण है उसमें ये सब जो चीज है उसका अपना बहुत महत्व है, जैसे आगम आपह प्रजा देश काल, काल में समय, सुबह का समय जो होता है वो सत्वगुण के लिए अनुकूल है, रात का समय तमोगुण के लिए अनुकूल है सोने के लिए, और दिन का जो समय है वो रजोगुण के लिए अनुकूल है, अर्थात उस समय आप काम करने का वृत्ति होता है, आप पैसा कमाने धन कमाने ये सब दिन में कर सकते हो। आजकल तो उसको भी बदल दिया, आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो नाइट ड्यूटीज होती है, यहाँ पर भी होती है डे ड्यूटीज, नाइट 24 आवर ड्यूटीज। हमारे एक भक्त थे 36 घंटा काम करके आते थे, 36 आवर्स नॉन स्टॉप काम करते थे, वर्क सोचे इस प्रकार के ड्यूटीज। सो इस प्रकार से काल का भी अपना एक, इसलिए कहते हैं ना 16 माला जल्दी सुबह करा करो, क्योंकि वो सुबह अच्छा समय होता है। सुबह हम जप करते हैं ना, फिर दोपहर को जप हो जाता है, सुबह जप होता है फिर क्या बोलते हैं,
सुबह को जप करना चाहिए, दोपहर को करते हैं और शाम को करना पड़ता है,
शाम को करना पड़ता है और रात को हो जाता है।
तो बात ठीक है, अगर सुबह में माला हो जाती है ना पूरा दिन चलेगी।
यस, रात को आप बहुत मेहनत करते हो तो पता नहीं कि अब रात को 16 हो गया, अच्छा ठीक है अब सोने का टाइम हो गया, क्योंकि उसको ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, वो आधे नींद में है। इसलिए इट इज गुड नॉट टू चैंट इन द नाइट, आई मीन एक्स्ट्रा राउंड्स नो प्रॉब्लम बट नॉट 16 राउंड्स। क्योंकि कल ही में एक लेक्चर में बता रहा था कि हमारे एक भक्त थे पूरा रात बैठ करके जप करते थे, होल नाइट, पूरा रात डेली रोज, और ऐसा भी नहीं फिर मंगला में नहीं आने का, ऐसा नहीं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड करते थे और फिर सेवा भी करते थे दिन में और फिर पूरा रात जप करते थे। डिफिकल्ट राइट, सुनने में अजीब लग रहा है बट आई हैव सीन हिम, प्रॉपर के डिसाइपल देख। सो यस,
तीन महीना मैंने नहीं किया,
पूरा रात बैठ कर जब किया
तो 60 राउंड्स कर दो,
64
नहीं 60 राउंड्स, 60 राउंड नहीं करा, 1 लाख हो जाता था 60 में, हाँ 60 तक करा वो टाइम,
ओके
आउटसाइड वाली चीज़ कुछ काम ही नहीं होता,
ओके ओके दैट्स गुड, 64 करना चाहिए। हमें भी एक बार ऐसा कुछ रिट्रीट करेंगे कि एक दिन में 64 माला पूरा बैठ करके साथ में, विल डू दैट, करेंगे एक बार प्रयास करेंगे, ट्राई टू दैट। सो ये काल, काल के बाद फिर कर्म, हमारे कर्म जैसे होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, तीन गुणों का कितना हुआ ये, फिर जन्म, किसी का जन्म ही होता है तमोगुणी में, यू नो जैसे कोई व्यक्ति का जन्म होता है तमोगुण खानदानी में और वहां पर सब गंदगी होती है और पहले से ही सब प्रकार के पाप किए जाते हैं, छोटा बच्चे छोटे बच्चे को पहला ही मांस खिला दिया जाता है, तो इस प्रकार का तमोगुणी वातावरण में उसका जन्म होता है। किसी का सत्वगुण में जन्म होता है अच्छे खानदान में, या कभी कोई रजोगुण है तो वो बस ऐश्वर्य वाला पहले से ही ऐसा होता है। फिर ध्यान, हमारे विचार, इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसके माध्यम से हमारे तीन गुण के प्रति सत्वगुणी विचार आते हैं, कई बार रजोगुणी विचार आते रहते हैं, लोभी लोभ के और तमोगुणी विचार, नष्ट करो काटो तोड़ो फोड़ो, ये सब विचार आते हैं तमोगुण। फिर होता है मंत्र, मंत्र में हम जिसका जप कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम तो अभी महामंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मंत्र सत्वगुणी मंत्र रजोगुणी मंत्र भी होते हैं तमोगुणी मंत्र भी होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की आहुति जाती है, कई बार भूतों की पूजा की जाती है। फिर वर्णाश्रम अर्थात संस्कार, उसको संस्कार बोलते हैं, कुछ लोग का संस्कार अलग अलग हुआ होता है, जैसे अंतिम संस्कार कितने 16 संस्कार होते हैं, तो जो 16 संस्कार को जिस कौन किस तरह से फॉलो कर। सो इस प्रकार की ये चीजों का वर्णन भगवान ने उद्धव को बताया था 11वें स्कंद में। कितना हुआ टोटल?
12 10 10
10 वस्तुएं है कि जिसके आधार पर शिव प्रभुपाद भी एक जगह बताए थे इसके विषय में कि लेक्चर में बता रहे थे कि सत्वगुण रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा। तो प्रभुपाद बताया कि सत्वगुणी व्यक्ति ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, ये आपका स्पेसशिप से नहीं जाता है सत्वगुण। आप स्वर्ग में जाना चाहते हो ऊर्ध्व गति चंद्रयान 2 है ना, 2 या 1 कौन सा है? 2 वो जाने वहां पर जाएगा तो वो ऊर्ध्व गति ऐसे मैकेनिकली जैसे रावण भी चाहता था कि उसको स्वर्ग मिले, तो उसने सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग तक, और देवताओं ने मना कर दिया, बोले ऐसे थोड़ी आ सकते हो, ऐसे कैसे घुस सकते हो स्वर्ग के, तो पहले कर्म करके आओ सत्वगुणी होकर आओ। बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। सो प्रभुपाद से जस्ट लाइक वी आर ट्राइंग टू गो टू मून प्लैनेट, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे। वो लोग कहते हैं कि सो अनलेस यू हैव योर बॉडी कंप्लीटली कंपेटेंट टू लिव ऑन सच प्लैनेट यू कैन नॉट गो देन। आप वहां जाने के जो आपको उपयुक्त शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक आप जा नहीं पाएंगे। जस्ट लाइक द साइंटिस्ट से दैट ऑन द मून प्लैनेट द टेम्परेचर इज 200 डिग्री बिलो 0 -200 डिग्री। अगर मून प्लैनेट का साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं -200 है, तो आपके पृथ्वी पे -200 तो पृथ्वी पर तो है ही नहीं है ना। आप एंटार्क्टिका भी चले जाओगे तो -60 या 70 आएगी, तो -60 भी हुआ था ये अपने US में हुआ था पता है एक दिन के लिए -60 अमेरिका में हुआ था एक दिन जस्ट लास्ट विंटर जस्ट वन डे -60 60-70 हो गया था। सिमिलरली सूर्य के लोक में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सो यू कैन नॉट जस्ट गो दिस वे, यू हैव टू गो थ्रू कर्म। फिर प्रॉपर एग्जाम्पल दिया कि जस्ट लाइक द व्हील टर्न्स अराउंड, एक चक्कर जो पहिया होता है घूमता है, तो इसमें क्या होता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्वर्ग के उठाए कभी नरक के डुबाए। हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म के आधार पर कभी हमें स्वर्ग में कभी नरक में फेंक देता है। ऐसे कर्म के आधार है जीव इति उति धाय, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। सेंसेक्स जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है हमारे, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। इट्स लाइक दैट, सम पीपल आर सफरिंग एंड दोस पीपल आर एंजॉय एंड सम दीज पीपल आर सफरिंग एंड दोस पीपल आर एंजॉइंग, ऐसा आप कह सकते हो। बट एक्चुअली एवरीवेयर आप ब्रह्म बहुवन आलो का पुनरावर्तन हो रहे, सब जगह पुनरावर्तन है, नो क्वेश्चन ऑफ लेमेंटिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ सुखी हो तो नेक्स्ट मोमेंट आपका क्या है? दुख है। अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो तो नेक्स्ट मोमेंट आपको सुख मिल जाएगा। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, वी हैव टू ट्रांसेंड। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, ये हमें प्राप्त करना चाहिए। सो ये तो हुआ सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, लेकिन प्रभुपाद साथ साथ में ये भी कह देते हैं कि जो तीनों गुणों से पर हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। तीनों गुणों से जो पर हो जाते हैं या कृष्ण भावनामृत में होते हैं उन लोग को डायरेक्ट कृष्ण के लोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। इन दिस वे एट द एंड ऑफ लाइफ वन मे बी ट्रांसफर्ड टू द एसोसिएशन ऑफ कृष्ण, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड नित्य लीला प्रविष्ट एंटरिंग इन टू द प्लेनेट ऑफ गोलोक वृंदावन, भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना भगवान के धाम में, नित्य लीला प्रविष्ट होता है उसको। ये शरीर जो है हमारा, अभी मैं आपके सामने मटेरियल वर्ल्ड में हूँ, भौतिक शरीर, अगर मैं आध्यात्मिक रूप से अगर सफल हुआ तो मैं ये शरीर छोड़ करके भगवान की नित्य लीला जहाँ हो रही है उस लीला में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक भक्तों को तीन गुणों की ये गति नहीं मिलती, ऊर्ध्व गच्छति, मध्य तिष्ठति, अधो गच्छति, ये तीन गति उनको नहीं भोगने होती। यस,
कोई जीव है वो बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, लेकिन शरीर पहले उसको जो मिला है वो तो भौतिक है, लेकिन बहुत भक्ति करने के बाद क्या वो शरीर यही जगत में आध्यात्मिक बन जाता है या?
हाँ, जैसे लोहे का एक रॉड होता है उसको अग्नि के अंदर डालो तो वो लोहा लोहा नहीं रहता, फिर वो अग्निमय बन जाता है, कृष्णमय। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है उसका शरीर ही पूरा आध्यात्मिक बन जाता है।
लेकिन उसको वो शरीर छोड़ के ही भगवान के धाम में दूसरा जो शरीर है वो उससे प्राप्त होता है और जाता है।
यद्यपि वो चेतना से तो भगवान के धाम में ही रहता है, चेतना उसकी ऐसी ही है जैसे उधर रहता है, लेकिन फिजिकली हमारी आंखों के सामने वो जो भौतिक पंचमहाभूत का शरीर है वो उसको छोड़ देता है और फिर वो दिव्य चक्र जो आध्यात्मिक शक्ति शरीर है वो प्राप्त करता है, लेकिन उसकी चेतना में फर्क नहीं आता, वो सेम ही रहता है।
मतलब जब तक वो देह में रहते है और पूर्ण भक्ति की अवस्था में तब तक वो देह भी आध्यात्मिक रहता है, लेकिन जब वो छोड़ देता है तब वो
तभी भी आध्यात्मिक रहता है,
तभी
आध्यात्मिक तो तभी रहता है, लेकिन वो पंच महाभूत का बना हुआ था इसलिए उसको यहाँ की जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार उसको विलय करना पड़ता है उसी शरीर को, लेकिन इसलिए तो समाधि बनाते हैं ना दिव्य भक्त ये सन्यासियों की, ताकि आप स्मृति रहेगी कि ये दिव्य शरीर धारण करने वाले लोग थे इस प्रकार में। सो टेक्स्ट नंबर 19 इस पढ़िए।
जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
हाँ, यहाँ पर बता देते हैं भगवान, मद भावम मुझे मेरे भाव को मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, मेरी प्रकृति को। वो मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों को कर्ता मानता है, वो समझता है कि ये सारे कार्य प्रकृति के तीन गुणों से संपन्न होते हैं और मुझे इस तीन गुणों से पर मान लेता है। गुणा गुणान वर्तन, क्या श्लोक क्या है? हाँ, मद भावम वो मेरे धाम मेरे भाव को प्राप्त करता है, जो तीन गुणों से पर हो जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त करता है वास्तव में वो मुक्ति की अवस्था पर स्थिर हो जाता है। पहले तो सबसे पहले हमें तीन गुण हम पर कार्य कर रहे हैं उसको पहले ऑब्जर्व करना है, पहले उसको चेक करो, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर उसको ऑब्जर्व करने के पश्चात हमारे कर्म को डिफाइन किया जाए कि डिवाइड किया जाए कि कौन से गुण में है, फिर हम गुण को भी समझ पाएंगे, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में हम एक्टिव नहीं है, गुण एक्टिव है, रजोगुण एक्टिव है, तमोगुण एक्टिव है, वो हमें करवाता है, और लेकिन हम उससे अलग हो जाते हैं फिर कि वो तीन गुण जो है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, गुण का प्रभाव आ गया इसलिए हम वो कार्य करें, तमोगुण का प्रभाव आ गया तो सोता ही रहा आदमी, खड़ा ही नहीं हो रहा है, वो उठ गया उसको अंदर से किसी ने फोन किया कहा कि भाई मंगला का टाइम हो गया उठ जाओ, तो बोले हाँ, फिर लेकिन तमोगुण उसको बोलता है क्या करेगा एक आरती चाहिए, नहीं करेगा आरती तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, सो जा कोई बात नहीं, थोड़ा सो जा, अभी भी कल एक भक्त से बात कर रहे थे, उठ गया, उसके मन ने उसको कहा कि अगर तूने इतनी सारी जिम्मेदारी ली है सेवा की, अगर तू आज जल्दी उठ जाएगा तो तू दिन में थक जाएगा, दिन में थक जाएगा तो तू सेवा नहीं कर पाएगा, और तू इतना जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदारी लेने के बाद जिम्मेदारी निभाएगा नहीं, ना ना, ना। इसलिए एक काम कर, क्या सो जा भाई। तो वक्त मुझे बता रहा था, मैंने उनको कहा दिस इज अ ट्रिक, ये तो माया आपके साथ ट्रिक कर रही है। तब वो आपको बोले सो जा, तो वास्तव में वो सोचता है कि नहीं, मैं तो एकदम प्रॉपर लॉजिक और रीजन से सो गया था। क्या रीजन था? कि मुझे सेवा करनी है, तो दिस इज ट्रिक। तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हमें पता पड़ेगा कि गुण काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे, गुण के आधार से काम हो रहा है। सो यस,
नॉर्मली जो भी कार्य होता है इंद्रिया मन बुद्धि और आत्मा, तो हम अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते क्या ऐसा होता है कि पहले इंद्रिया मतलब इंद्रिया जो भगवान की भक्ति में लग गई तो वो धीरे धीरे भक्ति भौतिक तृप्ति से वो ब्लड होती जाएगी, राइट? लेकिन वो भौतिक तृप्ति करने से ब्लड तो हुई है, भक्ति में लग गई, लेकिन मन जो है मन के अंदर वो अतृप्ति रहती है, तो इंद्रिया ब्लड रहती है लेकिन मन के अंदर वो इच्छा रहती है, राइट? तो उसकी वजह से जब तक मन जो है वो भी इंद्रियों की तरह केवल अध्यात्म में नहीं लग जाता है, तब तक उसके अंदर भी वो सब अपडाउन रहता है, लेकिन जिस समय मन अध्यात्म में 100% हो जाएगा उस समय वो भी ब्लड हो जाएगा, मतलब भौतिक अकॉर्डिंग टू मटेरियल वर्ल्ड वो ब्लड, लेकिन अध्यात्म में वो शाप, तब जाके अध्यात्मिक अपनी असली सफलता होगी ना।
यस, उसके एक्चुअली वो इंद्रियां और मन जो है वो जीरो नहीं होते कभी,
ट्रांसफर होते हैं।
हाँ, वो लोग
मटेरियल जीरो,
रुचि बदलते हैं
लेकिन ट्रांसफर हो जाता है,
उनका सब्जेक्ट बदल जाता है,
सब्जेक्ट बदल
जाता है, वो जैसे प्रोपोर्शनेटली, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल लेते हैं, अभी यहाँ इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दो और एक लैंप लेके आप बाहर से कमरे के अंदर आ रहे हो लैंप लेके, तो आप जब दूर थे तब इस कमरे में अंधेरा था कि नहीं? आप एक कदम आगे आए तो क्या हुआ?
थोड़ा सा लाइट,
दूसरे कदम, तीसरे कदम, चौथे कदम, धीरे 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 लाइट बढ़ा, राइट? तो जितना आप पास में आओगे उतना अंधकार दूर जाएगा, लेकिन आप बीच में अटक गए फिर चार कदम पीछे चल गए तो क्या होगा? फिर से अंधकार आएगा। तो कृष्ण सूर्य जैसे, सूर्य सम माया अंधकार जैसे, कृष्ण जैसे आपके पास आते हैं माया दूर जाती है, तो आपको लकड़ी लेकर के अंधकार को पीटने नहीं जाना पड़ता, भाग यहाँ से, यहाँ उजाला चाहिए, भागो यहाँ से, तो उजाला ऐसे नहीं आता है, उजाला आप लेके आओगे तो अंधकार अपने आप चला जाएगा, तो माया अपने आप जाती है, वो माया को हम धक्का मार के भाग फेंक नहीं सके बाहर, वो अपने आप चली जाती है माया। तो पहला स्टेप क्या है कि हम अपने आप को समझे और हम तीन गुणों से अपने आप को मुक्त करें, और दूसरा स्टेप है कि हम कृष्ण के पोजिशन को समझे कि कृष्ण तीन गुणों से पर, आप समझे, एक तो हम तीन गुणों से मुक्त हैं और एक कृष्ण तीन गुणों से पार है, ये हम समझे। यदि भी हम कृष्ण को साधारण व्यक्ति के मान देख सकते हैं लेकिन वो तीन गुणों से पर है। प्रभुपाद सेज, अ मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्पेल ऑफ द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड इन द 7th चैप्टर 13 and 14 दैट वन हु हैज सरेंडर्ड टू कृष्ण is relieved from the activities of material nature. For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. उस व्यक्ति, जो व्यक्ति वास्तविक रूप से देखता है तो प्रकृति के तीन गुणों का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर से समाप्त हो जाता है। कई बार हम लोग गलती से भी प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, जैसे आपको जैसे पहले हमने एक बार चर्चा किया था कि कई बार आपने देखा होगा कि आप पांव से आसन को हटाते हो या पांव से कुछ कार्य करते हो, मीन्स आप कई बार हम लॉर्डिंग हो रही, इतनी सूक्ष्म है ये भावना कि हम अधिपत्य चाहते हैं, लॉर्डिंग इट मटेरियल नेचर होता है, लॉर्डिंग इट मटेरियल नेचर, तो हम प्रभुत्व करना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो इसके भले हम भक्त भक्ति में जुड़ जाए फिर भी मन के सूक्ष्म जगह पर भी हमारे मन में ऐसी इच्छा रहती है कि हमें कोई भगवान के रूप में स्वीकार कर ले काश कोई मुझे भगवान मान लेता, आपके माँ बाप को नहीं, नहीं हमारे मन तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपको कोई प्रणाम करता है तो आपको अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा की भावना, फिर आप पांव से किसी चीज को उठा करके पटक देते हो दूसरी जगह पर। तो ये सारा प्रकृति के तीन गुणों का उसके ऊपर स्वामित्व जताने की हम भावना बता रहे हैं, सूक्ष्म रूप से ये है। लेकिन वास्तव में हम भगवान के दिव्य भाव को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम हमारी स्थिति और भगवान की स्थिति दोनों को समझते हैं। दो चीज, ऑब्जर्व द मोड्स वर्किंग अपॉन अस, तीन गुणों पर कार्य करते हैं, एंड कृष्णा इज बियॉन्ड द मोड्स। तो ये दो चीज जब हम समझते हैं तब जाके हम इससे मुक्त हो पाते हैं। यस, सो कृष्ण नेक्स्ट बताते हैं कि रिजल्ट्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इफ वी ट्रांसेंड द मोड्स। अगर हम तीनों गुणों से पर होना चाहते तो क्या परिणाम की आशा रख सकते हैं। 20 नंबर पढ़िए। नेक्स्ट,
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को जानने में समर्थ होता है तो वह जन्मों मृत्यु विधाना तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है।
इसी जीवन में अमृत का भोग वो कर सकता है, अर्थात वो अमृत प्राप्त कर सकता है। क्या क्या कैसे, व्हेन एम्बॉडीड बीइंग इज एबल टू ट्रांसेंड द थ्री मोड्स जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जन्म मृत्यु इत्यादि से मुक्त हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति तीन गुणों से मुक्त हो जाता है तो वो दुख और दुख से मुक्ति प्राप्त करता है और आध्यात्मिक सुख को सीधा अनुभव करना शुरू कर देता है। तो तीन गुणों से मुक्त होने का यह सीधा प्रभाव हो जाता है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये आता है। सबसे पहले तो तीन गुणों से मुक्त होने का प्रभाव, उसके पहले हमने क्या सुना, तीन गुणों का प्रभाव, राइट, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अभी टेक्स्ट नंबर 21 में अर्जुन बीच में भगवान को प्रश्न पूछता है कि बिफोर वी गो फर्दर, अब हमें ये बताइए कि जो जिस व्यक्ति ने तीन गुणों को लांघ दे पार कर दिया है, मुक्त हो गया है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। जैसे उसने पूछा था दूसरे अध्याय में वो समाधि स्थ सके सब
है ना, कैसे हंसता है, जैसे बैठता है, जैसे उठता है,
समाधि चित्त मुनि उच्चते किम प्रभास है तो ओके। सो टेक्स्ट नंबर 21 उसमें देखो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं अर्जुन।
अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वो तीन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है।
तीन प्रश्न है इसमें, राइट, थ्री क्वेश्चंस। एक तो तीन गुणों से पर होने वाले व्यक्ति के लक्षण, उसका बिहेवियर, और ये कैसे समझा जाता है कि उसने तीन लक्षण, उसने वो किस तरह से तीन गुणों को मुक्त होता है, क्या क्या विधि क्या है, कैसे वो है, ऐसी अवस्था उसने कैसे प्राप्त की। तो पहले तो उसके लक्षण कैसे होते हैं और उसका बिहेवियर कैसा होता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन के प्रश्न को इस तरह से बताते हैं वो कि अर्जुन सबसे पहले तीन गुणों से जो प्रभावित नहीं है ऐसे व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति में कौन से आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, ऐसे वो पूछ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भक्त होता है तो उसके गुण कैसे होते हैं कि वो विनम्र होता है, सहनशील होता है, इस प्रकार के, राइट, देयर मेन क्वालिटीज। सो व्हाट सिम्टम इज दैट, सो उसको दूसरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम कैसे ये समझे कि कोई व्यक्ति तीन गुणों से मुक्त है, ये प्रश्न दूसरे तरीके से, वही प्रश्न है लक्षण क्या है, या फिर हम कैसे समझे कि वो भक्त जो है वो तीन गुणों से पर है, ये प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन का अर्थ उन्होंने इस तरह से बताया है बल्ले विद्याभूषण ने कि क्या उसका जो बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर वर्तन आचरण, उसका आचरण क्या वो नियमित होता है या फिर अपनी इच्छाओं के आधार पर होता है, वैसा मुझे उसका बिहेवियर कैसा है, मीन्स उसका नियमित आचरण बिहेवियर रेगुलेटेड होता है या फिर अपने निजी इच्छाओं के का अनुसार होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने, उसका बल्ले विद्याभूषण ऐसा बताते हैं कि कौन सी विधि का वो उपयोग करता है इस स्थान तक पहुंचने के लिए, कौन सी प्रक्रिया फॉलो करता है। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस बाय अर्जुना, नाउ द आंसर बाय द लॉर्ड।
भगवान ने कहा हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेरे पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का प्रत्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते
हैं। हाँ, स्पेशल सब चीज, और सुख और दुख में उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर वो पृथ्वी मिट्टी पत्थर और सोना है सब एक समान मानता है। मुश्किल है ना, ऐसे सामने सोने का एक बिस्किट पड़ा है और एक मिट्टी का ढेर पड़ा है, तो उसके लिए दोनों एक जैसा ही है, उसका कुछ महत्व नहीं है, उसके लिए तीन गुणों से परे उसके। और जो शत्रु और मित्र को एक समान, तो ये सब प्रकार के जो गुणों का वर्णन आता है, वास्तव में अर्जुन के दो प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में आया है। अर्जुन ने जो दो प्रश्न, तीन प्रश्न थे ना अर्जुन के, उसमें से दो प्रश्न के उत्तर इसमें आ गए। शुरू से पहले जो दो प्रश्न, उसके माध्यम से ये तो बिहेवियर और उसका क्वालिटीज, उसका आचरण और उसका गुण सिम्टम्स, तो ये रिक्त इसके अंदर आ गया है। सो आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी होता है वो सभी प्रकृति के तीन गुणों के प्रति न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल को क्या कहेंगे हिंदी में, तटस्थ रहेगा, तटस्थ रहेगा, वो किसी से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो इच्छा ईर्ष्या फिर इन सब चीजों से वो प्रभावित नहीं होता, दुखी वो पर सेम रहता है। प्रभुपाद का अर्थ में कहते हैं, somebody can read, when one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. But when one transfers the consciousness to Krishna,
when one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. But when one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. One does not need this material body, and he does not need to accept the dictations of the material body. The qualities of the material moods in the body will act, but as a spirit soul, the self is aloof from such activities. Nor does he become aloof. How does he become aloof? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. Thus, transcendentally situated, the devotee becomes automatically free. He need not try to become free from the influence of the mode of the
body. Yes. So, Prabhupada Tatpur mein kehte hai ki उसको ये शरीर का भोग करने की भी इच्छा नहीं है कि शरीर का मैं भोग करूं, और उसका ऐसा इच्छा कि बस ये शरीर जाए तो अच्छा, शरीर जाए तो अच्छा, शरीर से मुक्त होने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर काम ही नहीं कर रहा है, वो आत्मा के स्तर पर काम कर रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन डजंट नीड दिस मटेरियल बॉडी, इट डजंट नीड टू एक्सेप्ट द डिक्टेशन ऑफ द मटेरियल बॉडी। इसलिए भौतिक शरीर के जो डिक्टेशन है या वो उसको प्रोवाइड नहीं करते। जैसे प्रभुपाद 6 महीने तक भोजन नहीं लिया था, 6 महीने तक अंध समय में तो खाते थे वो शरीर। और शिष्यों ने प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया एक बार कि प्रभुपाद आप कृपया प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। पता था कि ऐसे व्यक्ति कितना जी पाएगा, तो प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। इस तरह से प्रभुपाद को बहुत प्रार्थना किया, बहुत रिक्वेस्ट की, और अंत में परिणाम यह आया कि प्रभुपाद ने कहा कि ओके, इतने दिनों से खाए नहीं थे और प्रभुपाद ऐसे लेटे हुए थे, और प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को कहा मुझे खड़ा करो, बैठ गए, बैठ गए, और प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए प्रसाद लाओ, और तुरंत प्रसाद लेके आए। भक्त लोग खुश हो गए, प्रभुपाद खाने को राजी हो गए, दौड़ गए प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेके आए। और प्रभुपाद फिर एक दो तो तुमने अच्छी अच्छी चीज बताई, ऐसे ऐसा बना के लेके आओ, ये 6 दिन जिस महीने ये आदमी ने 6 महीने से खाया नहीं है वो ये कचौड़ी क्या खा पाएंगे, राइट। प्रभुपाद ने नहीं ये लेके आओ वो लेके आओ ऐसा। फिर प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि कृष्ण चाहते, कृष्ण मेरे लिए जो बताया गया है कि मेरा जो डेस्टिनी, कृष्ण ने मुझे लिबर्टी दिया है कि मैं चाहूं तो बदल भी सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ रुक भी सकता हूं अधिक समय, और मेरी अपनी इच्छा है ये। लेकिन फिर कुछ महीने के बाद फिर वापस प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं कृष्ण की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, मैं ये शरीर को त्याग करना चाहता हूं क्योंकि भगवान का ये इच्छा है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, प्रभुपाद प्रकृति के किसी भी नियमों से बंधे हुए नहीं थे, अर्थात वो 3 गुणों से पर है, उनको प्रकृति का कोई डिक्टेशन, बॉडी का डिक्टेशन काम नहीं करता है। वहां आप सोचेंगे कि आदमी कैसे काम कर रहा है, 22-22 घंटा काम करता है, कुछ होता नहीं इनको, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से पर है, इससे उनको बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इट इज हैपनिंग। सो यहाँ पर 3 शब्दों का उपयोग हुआ है, प्रकाशम, प्रवृत्तिम और मोहम। तो प्रकाश क्या है, ज्ञान सत्वगुण, प्रवृत्ति किसके लिए आता है, रजोगुण, और मोह जो होता है वो तमोगुण के लिए, लेकिन डिवोटीज ये तीनों से नेचुरल है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि डिवोटीज को कोई इमोशन नहीं होती है, इसका अर्थ ये नहीं होता है, लेकिन डिवोटीज भी विचलित हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होता है। रॉबर्ट थोड़ी है भक्त लोग कि बस इमोशनलेस होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होते। जैसे सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे भी अभी चर्चा कर रहे थे ना, अभी सनातन गोस्वामी वृंदावन में जितने भी जगह है, जितने भी वन है, उन सभी वनों में जितने भी लोग रहते हैं उस सारे लोगों के फैमिली मेंबर थे। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है तो मैं सनातन गोस्वामी को कहूँ, सनातन गोस्वामी मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है। ओ सनातन गोस्वामी मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तो वो मैंने इस बार उपज कुछ फसल ही नहीं हुई है, क्या करें। सनातन गोस्वामी सबकी बात को सुनते थे, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनलेस, दे हैव लव, बट दे आर हायर स्पिरिचुअली सिचुएटेड। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के भाइयों पर यक्ष ने हमला किया तो ध्रुव महाराज चुप नहीं रहे, और ध्रुव महाराज ने सामने अटैक किया। जड़ भरत, जड़ भरत तो नाम से ही जड़ भरत थे, उनको कुछ नहीं हो पड़े, कुछ भी गालियां दो, उनको जला हुआ खाना दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बस जड़ भरत। लेकिन वह उठा करके चल रहे थे और राजा रघुगण बार बार उनको डांट रहा था, ये ठीक से क्यों नहीं चलता है, ठीक से चल, ठीक से चलता है। तब फिर राजा राहुकर्ण के सामने जड़ भरत ने अपना मुंह खोला, बोले क्या कब से इस तरह से बता रहे हो, और फिर अपना शरीर आत्मा का ज्ञान उनको बताया। So therefore, the devotees, even though they are situated on the transcendental platform, but they are also living being, and therefore they are also having emotions. उनके हृदय में emotions होती हैं. So इस तरह से we heard here there are different things. Okay, now. We have now 10 minutes. Maybe we can try. हम एक छोटा सा ग्रुप बनाते, 5 मिनट आप डिस्कस कीजिए और 5 मिनट आप उसको प्रस्तुत कीजिए, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे जीबीसी मीटिंग का रोल प्ले, तो दैट विल डू नेक्स्ट सेटिंग में, सो विल कीप जीबीसी मीटिंग रोल प्ले, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट बिटवीन टेक्स्ट नंबर 22-25 में जो भी हमने अभी चर्चा किया. सो we can have 3 groups, माताओं का 3 और एक ग्रुप, और आप दोनों का, आपका 2 ग्रुप, स्मॉल ग्रुप. सो कई बार ऐसा कहा जाता है कि थियोलॉजिकल एप्लीकेशन है ये. सो 3 इन द फ्रंट एंड 3 इन द बैक. डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल और एंड पॉलिटिकल इश्यूज. ऐसा कहा जाता है कि भक्त लोग जो होते हैं वो सामाजिक या राजनैतिक किसी इश्यू को में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते. देयर आर मेनी डिवोटीज, दे से जिसकी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, या फिर कौन सी इसने क्या किया, इससे हु केयर्स, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो तीनों गुण से पर है, हम तो भक्त है, हमें इससे क्या लेना देना. तो जनरली ऐसा मानते हैं डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एंड देयरफॉर सम टाइम उन पर यह दोषारोपण होता है कि उनको मानव समाज के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है. दे हैव नथिंग टू डू विद द ह्यूमन सोसाइटी. उन पर इस तरह से दोष दिया, तुम लोग तो साधु लोग हो, भक्तों में क्या पता क्या हो रहा है, तुम लोग भक्त लोग हो. सो समटाइम्स दे आर एक्सक्यूज डूइंग नथिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी. वो कुछ नहीं करते समाज के लिए, कुछ भी नहीं करते वो लोग, उल्टा बींग आइसोलेटेड वो लोग अलग ही रहते, अलग ढलक रहते समाज से, भक्त लोग इसको आगे बढ़ गए, अलग ढलक रहते. And of being useless for anybody. वो किसी के कोई काम में नहीं आते, वो अपना ही करते रहते हैं. So now, what is your answer? इसका आप answer चर्चा कीजिए. What is the answer to this exclusion? And क्या इसमें कितना सत्य है? और तीसरा इसके साथ साथ है, how are we not affected by social politics? हम किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक इश्यू से प्रभावित नहीं होते, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं. आई यू कैन डिस्कस एंड कम विद इन 5 मिनट्स.